ओम शांति। हम सभी के बीच में हमारे आदरणीय भ्राता मोहन भाई सिंगल जी पहुंचे हैं। सभी एक हाथ की ताली से उनका स्वागत करेंगे। मोहन भाई जी ने बचपन से ही ये ज्ञान प्राप्त किया और हाई एजुकेशन प्राप्त करने के पश्चात आप ONGC में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तरीके फर्ज बजाई और फिर आपने ONGC से VRS ले लिया और संपूर्ण रीति से प्यारे बाबा की सेवा में मानवता की सेवार्थ आपने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। बाबा ने आपको विशेष वरदान दिया हुआ है, आपकी प्लानिंग बुद्धि है और आपने अपनी बुद्धि को बाबा की सेवा में बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया है और सारे भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर आपने बहुत सुंदर आध्यात्मिक संग्रहालयों की प्लानिंग करके उसका निर्माण कराया है, जिसमें से एक नवसारी और नवसारी के कनेक्शन में सापुतारा भी आता है। साथ ही साथ आपने अनेक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का भी आयोजन किया और उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। आप एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर के ऑफिस को भी संभाल रहे हैं, साथ ही साथ साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के आप कोऑर्डिनेटर हैं और तरह तरह के अभियान आप इस विंग के अंतर्गत निकालते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। आज ऐसी विरल विभूति हम सभी के बीच हम पाकर के अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। आज इस भट्टी के अंतर्गत उनके मुख के द्वारा हम सुनेंगे कि एकाग्रता से एक रस स्थिति कैसे बना सकते हैं। आदरणीय मोहन भाई सिंह।
ओम शांति। रंजनी परिचय तो बहुत लंबा चौड़ा दे दिया, लेकिन मैं समझता हूं एक जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है या कहें अवार्ड है, वो शायद उनके ध्यान से उतर गया। और वो अवार्ड है कौन सा? साकार ब्रह्मा बाबा और मामा की पालना का। इस संगम युग में इससे बड़ा अवार्ड कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। और वो भी साकार बाबा की पालना लगभग 7 वर्षों तक। तो ये तो मैं समझता हूँ मेरे जीवन का, भले और बहुत गवर्नमेंट से भी अवार्ड मिले हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी है, लेकिन इससे बड़ा तो अवार्ड कोई हो नहीं सकता। दूसरी बात कि आज का जो विषय बहन जी ने बताया, उससे पहले आज की मुरली तो सबने सुनी है ना? क्या मुरली की खास, आज की मुरली की विशेषता थी, विशेष पॉइंट कौन सा था? नाटक पूरा होता। ये तो अक्सर करके बाबा कहते ही हैं, अब घर जाना है, नाटक पूरा हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि साथ में एक बात और होती है कि जो बाबा ने कभी कभी हम अपने से या दूसरों से तंग हो जाते हैं। आज बाबा ने ये शब्द यूज किया ना, क्यों हो जाते हैं तंग? जब तमो प्रधान तो समय हो गया और सतयुग से लेकर अब तक हम सभी तमो प्रधान हो ही गए हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जब जीवन में घबराहट होती है, असफलता होती है और जीवन में ऐसा महसूस होता है बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती, तो घबराहट होती है, तंग हो जाते हैं और कई बार दूसरों को भी तंग करने के निमित्त बन जाते हैं। भले हमें मालूम पड़े न पड़े, लेकिन हमारी बोल से, व्यवहार से दूसरे भी कुछ ऐसा अशांत तंग महसूस करते हैं। इसलिए उसका भी समाधान आजकल बाबा प्रतिदिन इस मास की मुरलियों में दे रहे हैं। कौन सा समाधान? इस मास में कंबाइंड रूप में बाबा ने कहा है खास अपने को कंबाइंड। क्या क्या कंबाइंड? एक तो हम अपने को बाबा के साथ सदा कंबाइंड रूप का अनुभव करें, दूसरा और ठीक बोला कर्म और योग का कंबाइंड, उसका कॉम्बिनेशन, और तीसरी बात नॉलेजफुल और पावरफुल का, क्योंकि जितनी नॉलेज है, ज्ञान है, वो तो ठीक है, थ्योरेटिकल है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रूप है पावरफुल होना। नॉलेज है कोई भी चीज की, लेकिन अगर व्यवहार में, जीवन में वो उतरी हुई नहीं है तो उस शक्ति का भी अनुभव हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए कंबाइंड स्वरूप में भी, तो आज की मुरली में आज के विषय का काफी हद तक सार ये आ जाता है। और जब हम बात करते हैं एकाग्रता की, तो हरेक मनुष्य, हम सभी जीवन में खुश रहना चाहते हैं, शांति की स्थिति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो इन सब के लिए बाबा ने एक बात कही है कि वर्तमान समय कौन सी शक्ति की विशेष आवश्यकता है? कौन सी शक्ति? साइलेंस और समेत नहीं। सबसे आवश्यक शक्ति जो प्रतिदिन हम महसूस करते हैं, जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं, वो है निर्णय शक्ति या परखने की शक्ति। अगर हमारी निर्णय शक्ति कुशाग्र है, हम सही बात का सही समय पर निर्णय लेते हैं, तो जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। और उसके लिए एक शक्ति की जो विशेष आवश्यकता है, वो है ही जो जैसा आज का विषय है, एकाग्रता की शक्ति। निर्णय शक्ति भी तभी हमारी कुशाग्र हो सकती है जब हमने एकाग्रता हो। एकाग्रता जितनी होगी उतना उतना हमारी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति भी बहुत अच्छी होगी, एकाग्र। और एकाग्रता का तो बचपन से अभ्यास है, एकाग्रता की शक्ति भी तभी रिजल्ट देती है, सफलता दिलाती है। तब जब मन का काम तो हम सब जानते हैं, मन भक्ति मार्ग से कहते आए हैं चंचल है, भाग जाता है, क्या करे, जिधर हम लगाना चाहते हैं थोड़ी देर रुका फिर भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? जहाँ मन का लगाव होता है, झुकाव होता है, मन बार बार उधर भाग जाता है। फिर मन को खींच के लाना पड़ता है, थोड़ा एक दो मिनट लगा जहाँ हम लगाना चाहते हैं, फिर मन उधर ही भाग जाता है। तो इसीलिए एकाग्रता की शक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज है क्या, एक तो एकांत। आपको बताया भी होगा यहाँ पर जब भट्टी में आए होंगे ना, कि वही किस किस चीज का एकांत कर लेना है, कौन सा, मन का अंदर का एकांत तो करना ही है, लेकिन उसकी मदद के लिए बाहर का एकांत। यहाँ पर आप आए हैं घर गृहस्थी में, परिवार में, नौकरी धंधे में बहुत बोला चाली होती है, बुद्धि भाग जाती है इधर उधर, तो इसीलिए सेंटर पर भी वहां जाते हैं, अपने अपने शहरों में थोड़े समय एकांत मिलता है, वो है बाहर का एकांत। तो बाहर का एकांत यहाँ पर तो 3-5 दिन के लिए मिला आपको, तो बहुत कुछ परमानेंट चीज की प्राप्ति का अनुभव आपको होगा ही, लेकिन ये बाहर का एकांत जो है, ये एकांत तभी सार्थक है कब, जब एकांत के वास्तविक अर्थ में स्थित होते हैं। एकांत अर्थात एक की याद में अंत। एकांत भी तब फायदेमंद है जब जहां हम बुद्धि को स्थित करना चाहते हैं वहीं बुद्धि स्थिर हो जाए, एक की याद में अंत। और वो कब होगा, जब एकांत के साथ साथ इकोनॉमी होगी। लौकिक में भी इकोनॉमी जब होती है, धन की इकोनॉमी के हम सब अनुभवी है, बचत होती है और उस बचत का कुछ हिस्सा हम बैंक में रखते हैं और वो बढ़ता जाता है, देख करके सेटिस्फेक्शन होता है, खुशी होती है कि आई वेला में काम आएगा। तो इसलिए वो धन की इकोनॉमी का तो हम सबको अपने जीवन में अनुभव है। और बाबा ने कौन सी इकोनॉमी और बताई है, वो बात पक्की, संकल्प और समय की। ये इकोनॉमी भी बहुत आवश्यक है, इसीलिए वो वेस्ट ना हो। तो इसीलिए निर्णय शक्ति के लिए एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए एकांत, इकोनॉमी और एकानामी। एकानामी माने एक के नाम, एक की ही याद में बुद्धि अंत की प्राप्ति का अनुभव कर सके, एकानामी। और उससे भी बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज एकाग्रता के लिए कौन सी है, एकता। बाहर की एकता का तो हम जानते हैं, परिवार में एकता हो, वही अलग अलग समाज के विभिन्न वर्गों में एकता हो, हिंदू मुस्लिम आदि आदि बहुत चीज, लेकिन सबसे बड़ी एकता है हमारे अंदर की एकता। एकता किस किस चीज में है, एकता बिटवीन अवर हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड यानी मस्तिष्क की, दिमाग की, बुद्धि की, एक एक हार्ट माने विल। तो मन की एकाग्रता, एकता मन की एकता बुद्धि के साथ यानी हृदय के साथ, और तीसरी चीज है हैंड यानी हाथ यानी कर्मों के साथ, जिसे मोटे तौर पे हम लोग मन बुद्धि और संस्कारों की एकता उन्हें कह देते हैं। मन कुछ सोचता है, 10-20 विचार, आपको यहाँ आने का संदेश मिला होगा कुछ मास पहले कि फलानी तारीख में आबू में पांडव भवन में भट्टी है, तो मन ने बहुत सोचा होगा, हो सकता है कोई आवश्यक कार्य आपके सामने आए हूँ, अरे भाई उन्हीं तारीख में मुझे ये काम करना है, ये ऑफिस का काम है, तो मन ने बहुत विचार किए होंगे, लेकिन जब बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि नहीं मुझे जाना है और आपने रिजर्वेशन करा दिया, तो ये हो गई मन बुद्धि और कर्मों की एकता का प्रतीक। और जब तीनों एक लाइन में चलते हैं तो जीवन में सफलता होती है, नहीं तो होता क्या है, मन में 20-25 विचार आए, बुद्धि में 3-4 बातों को ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, और फिर संस्कार के वश कर्मों के वशीभूत होके एक तब एक निर्णय पर है, ये वास्तविक एकता नहीं है। वास्तविक एकता वो ही है मन बुद्धि संस्कार की, कि मन वो ही सोचे जो बुद्धि को निर्णय लेना हो और जो कर्मों के संस्कार के द्वारा हमें करना हो, यानी कि अनेकता में एकता अगर हुई, अनेक मन में विचार हुए नहीं, मन में वो ही विचार आए जो सिद्ध होने वाला है, जो करने वाले हैं, बुद्धि भी उसी पर ठप्पा लगाए, कर्म भी उसी पर हो, ये है वास्तविक एकता। और ये अंदर की एकता जो है, ये एकता ही हमें एकाग्रता की ओर ले जाती है। देखो ब्रह्मा बाबा को भी यही महसूस हुआ, ब्रह्मा बाबा 1936-37 में ये ज्ञान हुआ, बाबा को साक्षात्कार हुआ ऐसे विश्व परिवर्तन का, और उसके बाद बाबा को ये भी साक्षात्कार हुआ, जहाँ एक तरफ विनाश का साक्षात्कार हुआ वहाँ नई दुनिया का भी साक्षात्कार हुआ, और वहाँ बाबा को ये बात भी कानों में सुनाई पड़ी, शिव बाबा ने कहा क्या, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, सतयुगी दुनिया दिखाई बाबा ने, बहुत सुखमय संसार, राजकुमार राजकुमारियाँ आकाश से सितारे उतर रहे हैं, यहाँ राजकुमार राजकुमारी बन जाते हैं, हंसने गाने खुशी मौज नाचने की दुनिया है, सब प्रकार के जीवन के सुख है, खाना पीना जाना पुष्पक विमान आदि आदि महल माड़िया सब, लेकिन तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। जब बाबा ने ये कहा शिव बाबा ने, तो ब्रह्मा बाबा को सोच चला, कौन था, किसकी आवाज थी, मैं ऐसी दुनिया कैसे बनाऊंगा, मुझे तो मालूम नहीं इतनी अच्छी दुनिया कैसे बनेगी, लेकिन धीरे 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 सब बाबा को स्पष्ट होता गया। कब, जब बाबा शांति में बैठते थे और मन भागता था बाबा का, भक्ति मार्ग में तो मन भागता है, तो भागता था तो चारों तरफ, तो बाबा ने क्या किया, अज्ञान काल में देखो, यानी कि ज्ञान में आए भी नहीं थे पूरा, मन भागता था, तब मन को पत्र लिखा, क्या पत्र लिखा, हे मन मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, कर्मचारी है, मैं राजा तुझे जो ऑर्डर करूं वो तुझे करना चाहिए, लेकिन हे मन, तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया और तू बहुत शक्तिशाली हो गया। तू जहां जहां भागता रहा, चलता रहा, मैं भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा। क्यों? क्योंकि तू बलशाली हो गया कर्मचारी होते हुए भी और मैं राजा होते हुए भी तूने मुझे कमजोर कर दिया। ऐसे बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा, हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को बहुत कमजोर कर दिया। मैं राजा होते हुए भी कमजोर हो गया और तुम दोनों कर्मचारी होते हुए भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए। लेकिन फिर बाबा ने लास्ट पैरा में लिखा, इस पत्र की कावी हम लोगों को दी गई थी, बहुत अच्छी तरह बाबा ने सिंधी में पत्र लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद करके हम पुराने वरिष्ठ भाइयों को ये कापी दी थी, जो बाबा ने आदिकाल में लिखा था। इसे तो लास्ट पैरा में बाबा ने लिखा, लेकिन हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुम्हें कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा, अब मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित होता जा रहा हूं और काफी हद तक स्थित हो गया हूं। अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना होगा। ये साकार बाबा ने लास्ट पैरा में लिखा और उसके बाद से फिर बाबा का मन एकाग्र होने लगा। क्यों? क्योंकि बाबा स्वस्थिति में स्थित हो करके मन और बुद्धि को फिर ऑर्डर करते हैं। हमारा भी क्या, हम चाहते हैं मानो मेरी आपसे कुछ कहा सुनी होगी, बातचीत हो गई, अब बुद्धि में ज्ञान है कि भाई शांत हो जाना चाहिए, बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। एक चुप हो जाएगा तो दूसरा भी धीरे धीरे चुप हो जाएगा। ज्ञान बुद्धि में है थ्योरिटिकली, मैं चाहता हूं कि मैं शांत हो जाऊं, मन मेरा और भाग्य नहीं, लेकिन पुराने संस्कारों के कारण मैं मन को ऑर्डर भी करता हूं कि मन सहन शक्ति को धारण करो, समाने की शक्ति को, हे समाने की शक्ति आप आओ। मैं जो ये दूसरा बोल रहा है मैं इसको संभालो, सहन कर लो। तो मैं चाहता भी हूं, अभ्यास भी करता हूं, लेकिन कर नहीं पाता उस बात को। क्यों? क्योंकि उस बात को प्रैक्टिकल में इसलिए नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मैंने ये ऑर्डर किया समान की सीट पर स्थित हुए बिना। अगर मानो कोई ऑफिसर है, ऑफिस में जो सीट पर उसका अधिकार है, सीट पर बैठ करके वो ऑर्डर करता है, सब उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन अगर वो ट्रांसफर हो जाए या रिटायर हो जाए वो, तो उसके बाद वो अगर आएगा ऑर्डर करेगा तो कोई उसकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। ऐसे ही हम समान की सीट पर स्थित हुए बिना ऑर्डर करते हैं तो मन बुद्धि हमारी कर्म इंद्रियां हमारा ऑर्डर नहीं मानती। इसीलिए सबसे पहली बात है अपने समान की सीट पर स्थित होना और तब ऑर्डर करना। तो समान का तो बहुत बाबा ने समान दिए, 100 से ज्यादा समान की लिस्ट है, बाबा बताते भी है कि मैं आत्मा हूं, कलप कलप की विजयी आत्मा हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं आत्मा बलशाली हूं, मैं आत्मा अनेक बार मैंने विजय प्राप्त की है अभी भी मैं। तो पहले अपने समान में हम स्थित हो, समान का केवल समान को रिपीट ही न करे बल्कि समान के स्वरूप में स्थित हो जाए। भाव क्या है उसका, कैसे होंगे? मानो मैं समान धारण करता हूं, मैं फरिश्ता स्वरूप हूं। अब फरिश्ते बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे चलते हैं, बस जो आवश्यकता हुई देखा उतना ही बोला, उतना ही सुना, बाकी चीज पर उनका ध्यान ही नहीं रहता। तो मैं उस स्थिति में स्थित हो करके मैं इमेजिन करूं, मैं उस स्वरूप में स्थित हो जाऊं कि मैं फरिश्ता हूं, मेरे चारों तरफ लाइट का ऑरा जैसे चमक रहा है। फरिश्तों के पीछे पिक्चर्स में दिखाते हैं ना, अलग अलग गोल्डन स्वरूप में ऑरा चमक रहा है और मैं मेरे से चारों तरफ लाइट की किरणें निकल रही हैं, खुशी की किरणें, शांति की किरणें, आनंद की किरणें, पवित्रता की, प्रेम की, ज्ञान की, शक्ति की, सब किरणें अनुभव करें निकल रही हैं और सब तरफ जा रही है। तो शुरू में भले हम दो एक बार रिपीट करें लेकिन धीरे से हम उस स्वरूप में स्थित हो जाएं, महसूस करें ये किरणें निकल रही हैं, मैं शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं और जितना जितना ये किरणें निकल रही हैं मैं अनुभव कर रही हूं, ये किरणें निकल करके दूसरों तक भी जा रही हैं और वो भी शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, सुख उसमें स्थित होते जा रहे हैं। बाबा भी यही करते थे, साकार बाबा जब आते थे यही हिस्ट्री हॉल में योग कराते थे, हम सब सामने बैठे हुए होते थे, तो 20-25 लोग होते थे, ज्यादा उस समय थे नहीं, तो बाबा आके ऐसे ही दृष्टि देते थे एक एक को और बाबा कहते थे मेरे सामने ये सिर्फ ये 25-30 लोग ही नहीं बैठे हैं, सारे विश्व की आत्माएं मेरे सम्मुख मेरे नैनों में हैं और मैं सभी आत्माओं को दृष्टि दे रहा हूं, शक्ति दे रही हूं, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूं। हम अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कह सकते हैं। तो इस तरह हम ये केवल जब भी हो गिनी चुनी आत्माओं को न देखें कि सृष्टि की समस्त आत्माएं हैं, जैसा दादी जानकी भी बोलते थे, मैं खड़े होकर के सृष्टि का गोला हाथ में महसूस करती हूँ कि मैं सृष्टि की समस्त आत्माओं को योगदान कर रही हूँ, शांति दान कर रही हूँ, शक्ति दान कर रही हूँ। जितना जितना इस संकल्पों में स्थित होते जाएंगे बस यही तो एकाग्रता है। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि उस एकाग्रता में हमारे मन बुद्धि संस्कार ये भी एकता में आ गए, इकोनॉमी भी हो गई, एकानामी भी हो गई और मन का एकांत भी मिल गया, मन भाग नहीं रहा है, ये एकाग्रता है। और इस एकाग्रता में बचपन में हम सब ने वो एक्सपेरिमेंट तो किया है ना, खेल खेल में कि सूरज के सामने वो एक लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस ना, तो उसको रखते हैं तो सूरज की किरणें एकाग्र हो जाती हैं और नीचे कुछ कागज या कपड़ा कुछ भी रखो वो उस सूरज की किरणों की एकाग्रता से जल जाता है। वही सूरज है, नॉर्मल केस में रखो नहीं जलेगा, लेकिन उससे हमने एकाग्र कर दिया वो जल गया। बस यही योग ही एकाग्रता का साधन है। योग से जैसे ही ये एकाग्र होते हैं तभी बाबा कहते हैं योग से विकर्म भस्म होते हैं, जल जाते हैं, भस्म होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाबा की शक्तियां गुण सब एकाग्र होती जाएंगी, हम उसका स्वरूप बनते जाएंगे, तो वो एकाग्रता की शक्ति जो हमारे पास्ट कर्मों के विकर्म है ना, उन्हें भस्म करती जाएगी, जलती जाएगी। हमें महसूस होगा और क्या अनुभव होगा, कोई चीज जल जाती है, अस्तित्व खत्म हो जाता है, और थोड़ी भी जली हल्की हो जाती है। देखो कहते हैं मनुष्य भी ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन बस 5-6 पाउंड होता है कुछ ऐसा, और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और जब उसका अग्नि संस्कार किया जाता है तो उस राख का भी वजन 5 पाउंड ही होता है। तो देखो कितनी समानता है, पैदा हुआ तो भी वही वचन, गया तो वो वचन वजन, तो क्या लिया और क्या दिया। कहने को तो हम सब कहते हैं संसार में खाली आता है, खाली आज जाना है, स्थूल रीति से तो ये है, लेकिन हम आत्माएं भी स्थूल रीति से भले खाली आज जाएं, लेकिन हम भर्तू होकर के जाते हैं संस्कारों में, दिव्यता में, गुणों में, शक्तियों में। तो ये एकाग्रता के लाभ है, फायदे हैं, जितनी जितनी एकाग्रता, और उसके लिए बस एकांत मन का और बाहर का उसमें स्थित होते जाए। और कैसे हो ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन अक्सर करके देखा गया है हाँ, कि ये ही एकांत लाना मुश्किल होता है, बार बार मन भाग जाता है। एक व्यक्ति था सन्यासी, राजा के सम्मुख आया एक भिक्षा पात्र लेकर के, छोटा सा भिक्षा पात्र था कि राजन मुझे इसमें कुछ दान चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, मंत्री को बोला जाओ राजकोष में से हीरे मोती भर के ले आओ, इसके इस में डाल दो। मंत्री गया अंदर, अंदर जाके हाथ से दोनों हथेलियां भरी और भर के लाया, डाल दिया, वो भरा ही नहीं। दोबारा गया फिर डाला, तीसरी बार चौथी बार, देखने में वो भिक्षा पात्र छोटा था, लेकिन अनेक बार मंत्री भर के लाया लेकिन वो भरता ही नहीं था। तो राजा को कुछ क्लिक हुआ, राजा ने कहा कि महाराज इसमें जरूर कोई रहस्य है। तो उसने कहा हाँ रहस्य तो है, क्या रहस्य है। राजा ने कहा इतना छोटा सा ये पात्र होते भी भरता नहीं है, तो रहस्य ये है कि ये पात्र जो है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और मनुष्य की खोपड़ी में यहाँ मन होता है उसका, और मन कभी भी तृप्त नहीं होता, जितना भी मन को हो जाए मिल जाए, एक इच्छा होगी वो पूरी करेगा, दो और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, दो इच्छा पूरी करेगी 4 इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, तृप्त नहीं होता। तो चूंकि ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है इसलिए तृप्ति नहीं हो रहा है, इसमें जितना भी डालते रहो। तो मन को तृप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर मन जो है 3 बातों से गवर्न होता है, यानी 3 बातें मन के साथ संलग्न है। कौन सी? एक तो हम जानते ही हैं, मन का काम है सोचना, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की संख्या, क्वांटिटी, ये मन के साथ ही साथ है। बस मन में नॉर्मल केस में कुछ विचार होंगे, अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं बहुत शांति से सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, अभी समझ ली आपके मोबाइल में मैसेज आ जाए कि आपका फलाना फलाना जो प्रियजन है उसका एक्सीडेंट हो गया, बड़ा सीरियस है, फलाने हॉस्पिटल में है, पता नहीं क्या होगा उसका। पास आप वही हैं, उसी परिस्थिति में हैं, लेकिन मन आपका यहां से निकलकर तुरंत वहां पहुंच गया और मन में अनेक विचार आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, परिवार छोटा है आदि आदि बहुत। तो ये क्वांटिटी ऑफ थॉट बहुत बढ़ जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना भाई, नॉर्मल केस में अभी 25-30 विचार आते हैं, वो बढ़ जाते हैं 50 हो जाते हैं, और स्थिति ऐसी हो वो विचार 80-90-100 ज्यादा भी पहुंच जाते हैं। क्वांटिटी ऑफ थॉट बढ़ जाती है, उससे समझना चाहिए कि मेरे विचार जो है ना अब ये कमजोर विचार, निगेटिव विचार आते जा रहे हैं। यहाँ भी आप बैठे हैं, पॉजिटिव विचार और शांति में बैठे। तो एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट, दूसरी है क्वालिटी ऑफ थॉट। तो क्वांटिटी जितनी ज्यादा विचारों की बढ़ती जाएगी संख्या, उतनी क्वालिटी कम होगी उसकी। तो क्वांटिटी इज बोला जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी, अगर ये क्वांटिटी की संख्या बढ़ गई, आप अशांत हो गए, ऐसा कोई समाचार आया, अब क्या करें, मन को शांत करना है, उसके लिए आपको क्वालिटी ऑफ थॉट्स को बढ़ाना होगा। या तो मेडिटेशन दवाई से करें, मन एकदम वो हो जाए, शांत होने लगे, सोचना कम कर दे, वो टेम्परेरी मेजर है, उसका साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर योग के द्वारा, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, सशक्त विचारों के द्वारा क्वालिटी ऑफ थॉट को बढ़ाते जाएंगे, मैं आत्मा हूं, इस शरीर से न्यारी हूं, मैं आत्मा अब उस विचार को बोलती हूं जो विचार मुझे अशांत कर रहा है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। तो क्वालिटी ऑफ थॉट बढ़ाई तो क्वांटिटी ऑफ थॉट अपने आप कम हो जाएगी, और जो उस विचारों की संख्या इतनी बढ़ गई थी 80-90-100 पहुंच गई थी, वो फिर धीरे 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 कम होती होती वही 25-30-40 पर आ जाएगी। तो एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट, दूसरा क्वालिटी ऑफ थॉट, और तीसरा है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, विचारों की दिशा। तो जब दिशा, अक्सर करके विचार चारों तरफ भागते हैं, जहां जहां विचार का लगाव झुकाव होता है, कहीं स्पोर्ट की तरफ है, कहीं खाने की तरफ है, कहीं धन की तरफ है, जिधर भी है एक तरफ ही नहीं, अनेक तरफ भागते रहते हैं। और वो हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कैसे विचारों को जब एकता में सूत्र में पिरो देते हैं, एक तरफ हो जाते हैं, तो कितने शक्तिशाली हो जाते हैं। वो हम सब ने देखा है, वैसे भी बचपन से उदाहरण देते हैं भाई, एक पिता के अनेक पुत्र थे, लकड़ी का गट्ठर दिया बांधा, चार पुत्र थे, चार बड़ी बड़ी, ये तोड़ो, नहीं टूटा गट्ठर किसी से, और जब अलग कर दिया तो एक एक करके सबने तोड़ दिया। बचपन से ऐसे उदाहरण बहुत सुनते आए हैं। इसीलिए ये जो है, ये एकता मन के संकल्पों की, तो ये मन ही हमारा वास्तव में सब चीज का आधार है। मन जीते जगत जीत, इसीलिए कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारा एक रस स्थिति का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमें इस रेफरेंस में बता दें, वैसे तो बाबा से अनेक बार मिले थे, बहुत बार मिले, 6-7 साल के अंदर एक बार, साल में 3-4 बार भी आना हो जाता था, और क्योंकि विद्यार्थी भी थे, इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ रहे थे, IIT में 63 से 67 पढ़ाई करी, तो कई बार छुट्टियां भी होती थी, छुट्टी में यहीं आ जाते थे मधुबन में, या बाबा जहां होते थे, बाबा पहले कई जगह जाते थे, कानपुर गए वहां भी बाबा से मिले, दिल्ली 2 बार गए बाबा, वहां भी बाबा से मिलना हुआ। तो इस कारण से मिलना तो ये होता रहा, लेकिन जो इसके अंदर मन की बात थी तो मन को कैसे एकाग्र, तो इसका प्रैक्टिकल उदाहरण ब्रह्मा बाबा में देखा। जब बाबा से मिले, कोई भी मिलने आता था, पहली बार मिलते थे, बाबा से हाथ बढ़ो, आओ बेटे, आओ बच्चे, बस ऐसे बाबा का मैग्नेटिक पुल होता था, चुंबकीय आकर्षण होता था कि बाबा की बाह के अंदर हम आ जाते थे, समेट जाते थे बाबा के। फिर क्या होता था, वो तो बाबा की शक्ति थी और उसके अंदर फिर जैसे ही बाबा की बाह में आए, विशेषता ये होती थी कि हम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। वैसे अभी भी अशरीर होने का अभ्यास करें तो बहुत कठिन होता है, धीरे धीरे काफी समय बाद अशरीरी हो पाते हैं, लेकिन वो तो मिनट मोटर। क्यों? क्योंकि बाबा की शक्ति इतनी थी, बाबा ने ऐसा अभ्यास किया था। आप सबने सुना है डायरी में लिख लिख के, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा आदि आदि। तो जितना अपना अभ्यास किया होगा, बाबा इतना पावरफुल स्पिरिचुअल मैग्नेट बन गया था, ब्रह्मा बाबा की मैं बात कर रहा हूँ, शिव बाबा की नहीं। तो ब्रह्मा बाबा इतना पावरफुल जो है मैग्नेट जैसा आकर्षण पवित्रता का है कि उसके अंदर वो थोड़े समय के लिए तो विदेही बना देता था। फिर बाबा ऐसे, हाँ बच्चे आओ, आओ बच्चे, धीरे धीरे थपकी देता था। हम जैसे देह में आते थे क्योंकि विदेही पने का अनुभव होता था, फिर बाबा पूछता था, तोली खिलाता था, हाँ नाम वगैरह पूछा। हमें कोई बात पूछनी होती थी तो हम लोग पूछते थे, बाबा को कुछ बताना होता था तो बाबा बताता था। हमें याद है जब पहली बार बाबा से मिले तो बाबा ने पूछा, हाँ क्या नाम है बच्चे, तो हमारा एक्चुअली लौकिक नाम श्री है, श्री बोलते हैं ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण वाला। तो बाबा ने कहा, अरे क्या बच्चे क्या बोला, तो फिर रिपीट किया। तो बाबा तो बहुत जॉली स्वभाव के, और विश्व महाराजन आत्माओं की यही विशेषता होती है कि जैसा व्यक्ति होता है उससे बाबा के संस्कार 100% जैसे बाबा मिला लेता था। तो मैं तो उस समय काफी यंग था, 16-17 साल का था, 16। तो बस बाबा ने कहा, श्री आओ, दादी दीदी, जो बाबा के साथ है, आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो बाबा से भी ऊंच है। अब ऐसा हो सकता है? हमें तो लगा कि भाई जैसे कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, पहली बार ही बाबा से मिले थे। तो फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, अभी तो बाबा भी अपने नाम को श्री नहीं लगा सकता, क्योंकि श्री कौन लगा सकते हैं, देवी देवता, अर्थात वो मनुष्य जो जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी न तो शरीर पवित्र है क्योंकि ये तो विकारों की उत्पत्ति है, और न आत्मा पवित्र है क्योंकि जब से जन्म लिया है सतयुग से, या जिसने त्रेता से भी लिया हो द्वापर, सब सतो प्रधान से, जैसा आज मुरली में बोला ना, सब सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। तो इसीलिए अभी तो श्री कोई नहीं लगा सकता, तुम भी नहीं लगा सकते अभी श्री, तो बाबा आज से तुम्हारा नाम मोहन करता है। तो बाबा ने नाम बदल दिया, मोहन चेंज कर दिया, अब तुम्हें श्री जैसा बनना है। श्री यानी कि आत्मा भी पवित्र करनी है, शरीर भी पवित्र करना है। तो इस तरह बाबा हर एक बच्चे को कोई ना कोई, बाबा ने आप सबके भी नाम बदले हैं, सभी के, कोई क्या नाम बदला है, सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। राजा का बच्चा राजकुमार होता है ना, तो सब नाम नहीं लेते, भाई राजकुमार आ रहे हैं, राजकुमारी जा रही है आदि आदि। तो ऐसे हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हो गए, अब क्या करना है ब्रह्मा बाबा ने जो बताया, ब्रह्मा बाबा के पदचिन्ह पर चलते हुए हमें क्या बनना है और आगे बढ़ना है, और ब्रह्मा कुमार के साथ साथ ब्रह्मा बाबा ने जो बताया ना पदचिन्हों पर चलते हुए वैसा बनना है। फिर तो एक तो ये होता है मन, अंतिम समय में लास्ट में हमें याद है, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अंतिम दिन भी हम बाबा के पास थे, बहुत दूर पोस्टेड थे इंजीनियरिंग पास करने के बाद, फिर हमारी पोस्टिंग आसाम में हुई, ONGC में जॉब किया ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में, और बाबा ने ही जैसे हमें बोला, क्योंकि हमारे पास दूसरे और दो तीन जॉब थे, बाबा ने कहा नहीं बच्चे इसमें जाओ। मैंने कहा बाबा आसाम में तो उस समय 67 की बात कर रहे हैं, कोई सेंटर नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, एक भी नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा इसीलिए तो भेज रहा है, तुम्हें जाके वहां की जनता को संदेश देना है। और बाबा का काम था करण करावन हर बाबा है, हम सब बच्चे तो केवल निमित्त मात्र है, न तो हमें सामर्थ्य है करने की कुछ, न हम कर सकते हैं, लेकिन करण करावन हर जब हम बाबा को समझते हैं, और कई बार हम महसूस करते थे कि हम समझा नहीं सकते ये इतना बड़ा पार्टी आई है, बाबा का आह्वान करते थे बाबा आओ और बस ये संभालो, और अनुभव होता था बाबा जैसे इस शरीर में प्रवेश करके दूसरे को समझा रहे बता रहे। तो इस तरह एक तो ये होता था मन जीते जगत जीत, मन को जीतना। अंतिम दिन में हमने ये अनुभव किया 17 और 18 जनवरी को, हम 17 जनवरी 1969 की सुबह आसाम से यहाँ पहुंच गए। युक्ति से बाबा ने बुला लिया था, क्योंकि बाबा ने जब भेजा था तब बाबा ने कहा था बच्चे जाओ समय पर बाबा तुम्हें बुला लेगा। अब उस वक्त तो हम अर्थ समझे नहीं, लेकिन बाबा को अनायास ही देहरादून जाने का प्लान बन रहा था, बहन जी ने लिखा था कि म्यूजियम यहाँ बनाना है, आप थोड़ा गाइडेंस के लिए आ जाओ। तो बाबा का पत्र आया जरूर जाओ बच्चे, लेकिन पहले मधुबन आओ और तुरंत आओ। तो मधुबन गए और तुरंत बाबा ने बोला था, तो फर्स्ट टाइम 1969 में प्लेन से आए और समय पर पहुंच गए 17 जनवरी की सुबह, और दो दिन तक 17 और 18 जनवरी को बाबा के साथ साथ रहे, और बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। उसमें हमने क्या देखा, हमेशा तो जब भी मिलते थे बाबा के पास जाते थे, बाबा से पूछते थे, बाबा बताते थे, लेकिन उन दो दिनों में हमने देखा जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे कि बाबा से ये पूछेंगे, तो बस बाबा दृष्टि देते थे और बाबा कहते थे बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी प्रश्न पूछने की, बाबा ही उसका प्रश्न भी बता देते थे। ये है मन जीते जगत जीत का लक्षण। जिसने अपना मन जीता होगा वो दूसरे के मन के भावों को भी सहज रीति से पढ़ सकेगा, और पढ़ ही नहीं सकेगा उसका समाधान भी कर सकेगा। पहला लक्षण बाबा ने ये देखा कर्मातीत अवस्था का। दूसरी बात और क्या होता है, अक्सर करके हम लोग कहते हैं बाबा इतना समय हो गया, और बाबा ने भी सर्टिफाई किया हम लोगों की काफी समय पहले, करीब 15-20 साल पहले बट्टी हुई थी, तब बाबा ने कहा था सीनियर भाइयों की कि इन बच्चों को बाबा सर्टिफिकेट देता है कि इनमें विकारी विचार तो नहीं आते, लेकिन व्यर्थ विचार अभी तक भी आते, विकारी नहीं आते। और यही हम सब का अनुभव है कि ठीक है इतना समय हो गया, विकारी संकल्पों पर तो हमने काफी विजय प्राप्त कर ली, लेकिन व्यर्थ विचार अभी भी आते हैं। क्या करें व्यर्थ विचारों का? तो उसके लिए जैसे एक उदाहरण है, एक व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा शिल्पकार था, शिल्पी था, पत्थरों से मूर्ति बनाता था। बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति बनाई उसने, बनाई तो मूर्तियों को बनाता था, सब कहते थे आप तो भाई बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो, एकदम हूबहू। तो कहता नहीं, मैं तो मूर्ति बनाता नहीं, ये सब देखो आपने बना के रखी है ना, कि नहीं मैंने मूर्ति नहीं बनाई है। तो जो पत्थर लिया जिससे मूर्ति बनानी थी, उससे चारों तरफ जो व्यर्थ का घेरा था, व्यर्थ का पत्थर थे, वो निकाल दिया, और जब व्यर्थ निकल गया तो मूर्ति अपने आप ही प्रकट हो गई। बस अब हम सबको भी ये करना है, हम सबके अंदर भी संपूर्ण मूर्ति है हमारी, जो हमें बनना है, केवल वो व्यर्थ से ढकी हुई है। तेरा मेरा मान अपमान निंदा स्तुति अनेक व्यर्थ हैं, उन सब से ढकी हुई है। अब हमें उस व्यर्थ को हटाना है, और व्यर्थ से हटाने का क्या रास्ता है? एक व्यक्ति था, बड़ा अशांत था, गुरु जी के पास गया, सत्संग में वो भी बैठ गया, कई बच्चे सत्संग में बैठे हुए थे, तो वो सुनने लगा। इतनी देर में भूकंप आया बड़ी तेज, तो सब एकदम बाहर भागे, भागो भागो भागो, सब हिलने लगा, मकान हिलने लगे, पेड़ पौधे वगैरह सब बाहर भागे, गुरुजी वहीं बैठे रहे। बस सब चेले बाहर भागे, सबने कहा गुरुजी आप भी भागो, ये छपरा हिल रहा है, कभी भी गिर सकता है। तो गुरुजी शांति में बैठे ही रहे, नहीं भागे बाहर। थोड़ी देर बाद भूकंप शांत हुआ, तो सब चेले वगैरह लौट के आए, और सबने कहा गुरुजी हमने इतना कहा आपको, आप भागे नहीं, अगर ये गिर जाता तो आपको बहुत नुकसान हो जाता, चोट लग जाती। तो गुरुजी ने शांत होके सुना, फिर कहा अरे तुमने देखा नहीं, तुम सब भागे, मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था। कहा गुरुजी आप तो वहीं के वहीं बैठे हुए थे। कि नहीं नहीं तुमने गौर से नहीं देखा, गौर से देखते तो मैं भी भागा था। नहीं गुरुजी, सबने एक दूसरे से पूछा, सबने कहा कि नहीं गुरुजी तो वहीं की वहीं बैठे थे। तो गुरुजी ने कहा नहीं, भागा था, अंतर ये था, जानते हैं कि तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अंदर की तरफ। बस अब इसी चीज की आवश्यकता है, कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो परिस्थिति से घबरा के हम बाहर भागते हैं। भाई भूकंप तो एक उदाहरण दिया, फ्लड आए, बाढ़ आए, सुनामी आए, बादल फटे, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, कोई भी हलचल होती है, तो हम सब बाहर भागते हैं। लेकिन बाहर तो हर जगह ही हलचल है, तो अंदर ऐसे स्थान पर भागना चाहिए जो अचल है। लास्ट पेपर ही हमारा ये है, अति हलचल में अति अचल। जितना हम हलचल में अचल रहेंगे, वो ही हमें पास विद ऑनर्स बनाएगा। तो अति हलचल में अति अचल, तो है ना, एकाग्रता द्वारा एक रस स्थिति, तो वो ये एक रस स्थिति है। परिस्थितियां भिन्न भिन्न हो, लेकिन हमारी स्थिति एक रस। अपने लिए हमें ही ढूंढनी है कि विपरीत परिस्थितियों में हम एक रस स्थिति कैसे रखें। ब्रह्मा बाबा ने भी ढूंढी, बाबा को भी एक विपरीत परिस्थिति का रोज सामना करना पड़ता था। कौन सा? खांसी का। बस कई बार बाबा मुरली चलाते थे, मुरली चलाते चलाते भी बाबा को बहुत तेज खांसी एकदम आ जाती थी, तो बस बाबा देखते थे, और उस खांसी में फिर बाबा क्या करते थे, देखो बच्चे आज ये खांसी आई है, शरीर तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है इतने जन्म लेते लेते, और खांसी के रूप में ये परिस्थिति आई है। लेकिन कल बाबा जाके फिर से ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा, छोटा बच्चा बनेगा, नई दुनिया होगी, हर तत्व नए होंगे, शरीर नया होगा, आत्मा सतो प्रधान होगी, कोई खांसी कोई तकलीफ नहीं, और बस बच्चे बाबा ऐसी दुनिया आने वाली है। और उस दुनिया का बयान करते करते बाबा जैसे खुशी में क्या करता था, खगिया मारने, वाह, बच्चों को भी खुशी में एकदम कोई भी परिस्थिति हो वो विपरीत परिस्थिति को बदल करके अपनी स्वस्थिति की शक्ति के द्वारा कोई भी विपरीत परिस्थिति बदल सकती है। तो उसको बदल करके बाबा इतनी स्वस्थिति शक्तिशाली कर लेता था कि वो विपरीत परिस्थिति वार ही नहीं करती, थोड़ी देर में ही बस खांसी जैसे रुक जाती थी और बाबा फिर से मुरली चलाने लगता था। हम सब जानते हैं परिस्थितियां तो अंत तक आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, बहुत हिलाएंगी, लेकिन वो हमें ही करना है, अपनी विपरीत परिस्थिति का काट हमें ही ढूंढना है कि वो विपरीत परिस्थिति को कैसे हम स्वस्थिति की शक्ति से पावरफुल शक्तिशाली बना सकते हैं। तो जितना स्वस्थिति एक रस होती जाएगी उतना उतना अंत में क्या होगा कि जितने भी जो भी पेपर आएंगे ना, फिर हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वस्थिति हमारी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि हमारे चलन और चेहरे, जो बाबा कहता है ये अंतिम सेवा का साधन है, चलन और चेहरा, जिसके की द्वारा दुआएं, बाबा कहता है दुआएं सबसे सहज साधन है सेवा का, दुआएं देते चलो दुआ लेते चलो। तो बस वो तभी होगा, हमें बोलने की भी जरूरत ना पड़े, हमारा चेहरे से ही दुआएं निकले, हमारे चलन से भी। तो अभी से हम सब ये प्रैक्टिस करें, हम तो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि साकार बाबा के साथ रहे हैं तो बाबा को देखते थे चलन में, बाबा कैसे हाथ पीछे करके धीरे 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 चलना तो है लेकिन एकदम छप 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 करते हुए नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, बुद्धि योग अपने आप ही बाबा की तरफ रहेगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके कोई भी कार्य देख भी रहे हैं, बड़ी एकदम ऐसे चंचलता से नहीं बल्कि बड़ी शांत स्थिति से आत्मिक भाव में देखें, आत्मिक भाव में सुने, आत्मिक भाव में बोले, वो वास्तव में है। न बुरा बोलो न देखो न सुनो, बुरा माने कोई अशांति के भाव नहीं बल्कि इतने पॉजिटिव दृष्टिकोण से हम सुनते रहे चलते रहे। और उसमें क्या होगा अंत में, सबसे बड़ी बात है जो होनी चाहिए, जो हमें अंत में आवश्यक है, उसी के लिए बाबा ने भी पुरुषार्थ किया, सफल रहे, हम बच्चों को भी करना है, वो है अंत मते सो गति का, अंत में कोई भी और याद ना आए। वो कब होगा, जब हमारी स्थिति जैसे कबीर दास भी बोल के गए ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। होता क्या है, या तो हमारा किसी से बहुत प्रेम होगा स्नेह होगा, उसे मन की बात बताए बिना नहीं रह सकेंगे, या फिर उसके साथ कुछ वैर भाव होगा, कोई ऐसी बात होगी जो हमें अच्छा नहीं लगती होगी, और इस कारण से अंत समय अगर वो याद आ गए तो बस फिर तो अंत मते सो दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जीते जी हमें ये देखना है कि न तो मेरा किसी से अति प्रेम हो और न किसी से कोई वैर भाव, सबसे इतना समान दृष्टि से देखे हैं, तो वो अंत में हमें संपूर्ण बना देगा। यही एक रस स्थिति है जो कि एकाग्रता से आती है, और यही एक रस स्थिति हमें अनसम है जो है उस कर्मातीत अवस्था की तरफ ले जाएगी जिसके कि हम सब इच्छुक हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।